नमस्कार भारत, 1 फरवरी दिन बुधवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। कल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बेहोश होकर गिरे पूर्व विदेश राज्य मंत्री और सांसद ई अहमद का निधन। नोटबंदी के बाद बजट पेश करने जा रही मोदी सरकार से क्या है उम्मीदें और क्या है चुनौतियां?
अरुण जेटली जी के लिए और सरकार के लिए ये बजट सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि नोटबंदी के दौरान इनके सारे कैलकुलेशन बिगड़े हैं।
और आपको सुनवाएंगे पंजाब में जट यमला को लोकप्रिय बनाने वाले किरदार पर एक खास रिपोर्ट। सुनवाएंगे अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और सांसद ई अहमद का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बुधवार तड़के निधन हो गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की है। 78 साल के ई अहमद केरल के मल्लापुरम सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। मंगलवार को जब संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान ई अहमद को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए बधाई दी और सरकार के काम की सराहना की। राष्ट्रपति ने बजट के बारे में भी कुछ संकेत दिए। उन्होंने कहा,
एट द कोर ऑफ ऑल माई गवर्नमेंट्स पॉलिसीज इज द वेलफेयर ऑफ द
गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा हमारी सरकार की सभी नीतियों के केंद्र में हैं। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय के आदर्श से प्रेरित है और उनके जन्म शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष की तरह मनाया जा रहा है। ये थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सीनेट की फाइनेंस कमेटी में मौजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नामांकित 2 प्रतिनिधियों के लिए वोट का बहिष्कार कर दिया है, जिस कारण इस प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया गया है। इन सदस्यों का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री के लिए नामांकित टॉम प्राइस और स्टीफन मनूशिन की आर्थिक गतिविधियों के बारे में और जानकारी चाहिए। ट्रंप की ओर से नामांकित अन्य प्रतिनिधियों को वोट के जरिए चुना जाएगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल के पद के लिए जेफ सेशंस भी शामिल हैं। अमरीकी गृहमंत्री जनरल जॉन केली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादित आदेश का समर्थन किया है, जिसके तहत ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों से अमरीका आने वाले यात्रियों और शरणार्थियों पर पाबंदी लगा दी थी। जनरल केली ने कहा कि देश में आने वाले चरमपंथियों को रोका जाना चाहिए और वो अमरीकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ये आदेश मुस्लिमों पर रोक लगाने वाला है। उन्होंने कहा, इस धरती पर करीब 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इनमें से सभी को सभी चीज़ों का हक है और वो अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत कम संख्या में लोगों को एक निश्चित समय के लिए रोका जा रहा है, ताकि हम देख सकें कि वो लोग किस तरह की प्रक्रिया अपना रहे हैं। अगर मैं कहूँ उनमें से कुछ देशों के नाम जल्द ही इस सूची से नहीं निकाले जाएंगे, तो मैं आपसे झूठ कहूँगा। ये वो देश हैं जो खुद संकट के दौर से गुजर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन सभी देशों के नाम सूची से निकाले जाएं। ये थे अमरीकी गृहमंत्री जनरल जॉन केली। कोलंबिया में सरकार का कहना है कि ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के 2 महीने बाद इसके तहत अब फार्क विद्रोही समूह के करीब 4,000 से अधिक सदस्य फौज से नाम वापस लेने के लिए बनाए खास जगहों में इकट्ठा होने लगे हैं। हालांकि वामपंथी दलों के करीब 2,000 हथियारधारी सदस्य अब तक यहां नहीं पहुंचे हैं। कोलंबिया के शांति प्रक्रिया अधिकारी सर्जियो जारामेलो ने इसके लिए तय समय सीमा को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया है। समझौते के मुताबिक विद्रोहियों को पहुंचने के लिए आज मध्यरात्रि तक का समय दिया गया था। कोलंबिया में पिछले 5 दशकों से चले आ रहे संघर्ष को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए बीते साल सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच शांति समझौता हुआ था। अफ्रीका को अपना पहला रोग नियंत्रण केंद्र मिल गया है। मंगलवार को पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर काम करने के लिए संस्था अफ्रीका सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का उद्घाटन हुआ। ये अफ्रीकी संघ का हिस्सा होगा और इसका मुख्यालय इथियोपिया के एडिस अबाबा में होगा। बीबीसी समाचार।
तारीख 1 फरवरी दिन बुधवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि शनिवार 4 फरवरी का दिन भर कार्यक्रम आप शॉर्ट वेव 5885 किलोहर्ट्ज, 7600 किलोहर्ट्ज, 9740 किलोहर्ट्ज और 11995 किलोहर्ट्ज पर सुन पाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकसभा के सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद के निधन से। कल बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण चल रहा था, उसी दौरान ई अहमद को कार्डियक अरेस्ट हुआ और वे बेहोश होकर गिर गए। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ आज तड़के 2:15 बजे उनका निधन हो गया। ई अहमद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। 78 साल के ई अहमद केरल के मल्लापुरम सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। अहमद पेशे से वकील थे और उन्होंने विधानसभा के सदस्य के तौर पर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। पहली बार वे 1991 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो साल 2004 से 2009 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। उनकी पार्टी के केरल से सांसद ई टी मोहम्मद बशीर से मैंने थोड़ी देर पहले बात की तो उन्होंने और जानकारी दी।
Ahmed Sahib's death was confirmed by the hospital authorities as time as 2:15.
मोहम्मद बशीर बता रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान वे बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें अच्छा इलाज मिला लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और आज सुबह 2:15 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन मोहम्मद बशीर अस्पताल के व्यवहार से काफी दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि अस्पताल ई अहमद के बारे में आधी अधूरी सूचना दे रहा था और लोगों को उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा था।
Anyhow, knowing the whole thing, you know, there he had one daughter. That daughter is also a doctor.
अपने नेता को याद करते हुए मोहम्मद बशीर ने बताया कि ई अहमद काफी लोकप्रिय नेता थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मोहम्मद बशीर कह रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण पद उन्हें उस समय मिला था जब उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं से उनकी मित्रता थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कई बार भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। वे अच्छे लेखक भी थे और अच्छे वक्ता भी। तो क्या ई अहमद के निधन से आज जो बजट पेश किया जाना है वो होगा या नहीं? मोहम्मद बशीर कहते हैं,
That I don't know. As for the president, if sitting member is died, you know, then parliament.
अभी तक तो यही परंपरा रही है कि अगर किसी मौजूदा सांसद का निधन होता है तो सदन की कार्यवाही नहीं होती है। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या करेगी, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं कि सरकार परंपरा से हटकर काम करे, क्योंकि ऐसा करके सदन अपने सदस्य को याद करता है। तो फिलहाल इस पर सवाल है कि आज बजट पेश होगा या नहीं। वैसे देखा जाए तो जैसी परंपरा रही है, श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो जाती है। अब इस पर सवाल कायम है कि बजट आज पेश होगा या नहीं, लेकिन सरकार जो बजट पेश करने वाली है वह कई मायनों में खास है। पहली बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जा रहा है और बजट पेश करने की तारीख भी खिसकाई गई है। नोटबंदी के कठिन दौर के बाद सभी को वित्त मंत्री के पिटारे से राहत की उम्मीद है, लेकिन पेश होने से पहले ही बजट बन चुका है चर्चा का केंद्र। पूरा ब्यौरा मानसी दास से।
बीते साल की नवंबर 8 को हुई नोटबंदी की घोषणा के बाद वो अहम दिन आ गया है जब पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि मोदी सरकार ऐसी क्या नई घोषणा करने वाली है जिसका असर आम आदमी की रसोई पर पड़ेगा। ये पहली बार होगा जब आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विरोधी पार्टियों ने चुनाव से पहले बजट पेश करने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया है। विरोधी दलों का कहना है कि भाजपा चुनावों में सियासी फायदा लेने के लिए मतदान से पहले बजट पेश कर रही है। राज्यसभा में विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा,
सरकार ने बजट उनको प्रीपोन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे इलेक्शन जो गोइंग स्टेट्स हैं उनमें असर पड़ सकता है। हमने अब सरकार को कहा कि ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिसको सरकार को जो भारतीय जनता पार्टी उसको लाभ हो जाए।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने सरकार से चुनाव के नाम पर बजट की तारीख आगे करने का कारण मांगा।
चुनाव के नाम पर बजट को आगे क्यों किया आपने, क्या है कारण, अभी तक बताइए देश को कि भाई 28 फरवरी से 1 फरवरी पर करने का मतलब क्या है आपका। हम कह रहे हैं उसका मतलब एक गलत मतलब है। गलत मतलब ये है कि 28 फरवरी से पहले आपको तीसरे क्वार्टर का जो आपके आंकड़े जो है हमारी अर्थव्यवस्था की हालत क्या है वो सामने आएंगे और बजट उसके आधार पर बनता है। अब आपके पास वो आंकड़े ही नहीं है।
विरोधी दलों की सभी दलीलों को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया था। भाजपा इसे देश का बजट कह रही है। संसदीय मामलों के मंत्री और भाजपा के नेता अनंत कुमार के अनुसार
ये सार्वदेशिक बजट है, देश का बजट है और देश के हित में ये बजट होगा। इस बजट के बारे में अभी उच्चतम न्यायालय भी अपना आदेश दे चुका है और चुनाव आयोग भी अपना राय बता चुकी है। इसलिए मुझे लगता है हर बार जैसे बजट पेश होती है इस बार भी बजट पेश होगा।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उम्मीद जताई कि बजट सत्र के समय का सदुपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल एक महीने पहले बजट पेश किया जाएगा जो अपने आप में एक नई परंपरा की शुरुआत होगी।
पहली बार बजट 1 फरवरी को हो रहा है, आज एक और नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है। एक तो बजट करीब 1 महीने पहले आ रहा है, दूसरा इसके साथ रेल बजट भी जोड़ दिया, व्यापक चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द, लेकिन विरोधी दल भी कहां चुप बैठे हैं। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि बजट सत्र के पहले दो दिन उनका दल संसद में उपस्थित नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा है कि चुनावों को देखते हुए बजट में लोक लुभावन योजनाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में इंतजार इस बात का है कि सरकार बजट पेश करने में विरोधियों के आरोपों से कैसे बचेगी और बीते 2.5 महीनों से नोटबंदी की मार झेल रही आम जनता को कैसे राहत पहुंचाएगी।
नोटबंदी के बाद की स्थिति में क्या क्या घोषणा कर सकती है सरकार, किस तरह के ऐलान हो सकते हैं, क्या आयकर में छूट की सीमा बढ़ेगी, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने बात की वरिष्ठ पत्रकार एमके वेणु से और सबसे पहले सरकार की चुनौतियों के बारे में पूछा।
अरुण जेटली जी के लिए और सरकार के लिए ये बजट सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि नोटबंदी के दौरान इनके सारे कैलकुलेशन बिगड़े हैं और हालांकि ये पब्लिकली बोलते हैं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर यहाँ तक कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और कई संस्थाओं ने ये कहा है कि GDP ग्रोथ कम से कम 1% तो गिरेगा और ये अंडर एस्टिमेट है। उससे ज्यादा जो छोटे उद्योग हैं और फार्म सेक्टर जो इंडिया में है उसको बहुत बड़ी मार पड़ी है और मेरे हिसाब से कम 15-20 मिलियन डेली वेज लेबरर्स हैं जो जिनको रोजाना काम ढूंढते हैं वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिमोनेटाइजेशन से पहले भी विकास दर गिर रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ था के ऊपर ये और भी बड़ा चोट लगा है। और ये इकोनॉमिक सर्वे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो वित्त मंत्री के जो एडवाइजर निकालते हैं उन्होंने ये कंसीड किया, उन्होंने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन का रिस्क ये पूरा अगले साल रहेगा।
सरकार को एक तरफ तो अर्थव्यवस्था संभालनी है, दूसरी तरफ लोगों ने जो डिमोनेटाइजेशन के दौरान नोटबंदी के दौरान जो दिक्कतें झेली हैं तो उनको कुछ राहत भी देनी है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सकें। तो ये एक तरह से सरकार दो पार्टों के बीच में फंसी हुई है। तो क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप इस बजट से?
प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा है कि लोगों को तकलीफ हुई है इसलिए लोगों को कॉम्पनसेशन किसी तरह मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा इसका इंतजार है। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पे कुछ शायद ऐलान करेगी, सारे जो गरीब हैं उनको एक मिनिमम इनकम दी जाए। उस अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा उनके घावों में मलहम लगेगा, नहीं तो कुछ अर्थशास्त्री का कहना कि वो भी करने के लिए सरकार को रेवेन्यूज तो चाहिए, अगर ग्रोथ नहीं है तो टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगी और वित्तीय घाटा कैसे पूरा होगा। और ऊपर से आप देखिए बाहर ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज वहां बैठी हुई है कि वित्तीय घाटा अगर हिंदुस्तान बढ़ाता है तो उनकी रेटिंग हिंदुस्तान की डाउनग्रेड करने की उन्होंने भी एक धमकी सी दी है पहले से ही। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए हैं पिछले 2.5 साल में उन्होंने एक तो गरीबों को आश्वासन दिया कि आपकी स्थिति इम्प्रूव होगी और आपको रोजगार मिलेगा और जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं और बड़े उद्योग को बोला कि आपको भी इन्वेस्ट करने का पूरा मौका दिया जाएगा और आपको भी टैक्स कंसेशन जो बेनिफिट मिलेंगी। मगर आज की तारीख में ना उन्होंने गरीबों को जो वायदा किया था, किसानों को वायदा किया था वो पूरा हुआ है और बिजनेस कांग्रेस भी थोड़ा नाराज है, जो उनको वायदे किए थे वो भी नहीं पूरे हुए। तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से दोनों तरफ से थोड़ा सा ये सरकार अब फंस सी रही है, और तीन साल निकलने को आ रहा है बजट के बाद। अब यूपी इलेक्शन में अगर ये हारते हैं तो मोदी जी के लीडरशिप पे भी सवाल उठ सकता है पार्टी के अंदर से ही।
एक ये भी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ही चेतावनी दे चुका है कि आप राज्यों के लिए कुछ बहुत घोषणा ना करें, क्योंकि चुनाव है और लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ घोषणा करें। 31 दिसंबर को काफी कुछ घोषणाएं पहले ही प्रधानमंत्री कर चुके हैं, तो अब वित्त मंत्री के पास क्या कुछ बच गया है?
देखिए, जो 31 दिसंबर में जो घोषणाएं की थी वो ज्यादातर वो जो चालू जो सोशल प्रोग्राम थी उनको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था। अभी जो है इस बजट में मेरे को लगता है कि ये कुछ जरूर ऐलान करेंगे किसानों वगैरह के लिए। और ये बात भी सही है कि यूपी का नाम तो नहीं लेंगे, मगर यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर आप चाहे किसानों के लिए करो तो यूपी के किसान को फायदा होगा, और अगर आप गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं उनके लिए करो तो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे यूपी में है, तो ये फायदा तो होगा पार्टी को। और वो इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर को का उल्लंघन किए बगैर भी ये फायदा पहुंचा सकते हैं।
अखबारों में और इस तरह की बात कही जा रही है कि जो इनकम टैक्स की जो दरें हैं उसको बढ़ाई जा सकती है, मतलब जो स्लैब है टैक्स फ्री नेट का वो बढ़ाया जा सकता है और लोगों को छूट दी जा सकती है कि वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकें या कम टैक्स दे सकें। उन लोगों के लिए कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप?
हिंदुस्तान में जो कर देने वाले लोग हैं केवल 3% है पूरे मतलब पॉपुलेशन का, आपको 30-35 मिलियन से ज्यादा कर देने वाले है नहीं। हालांकि थोड़ा बहुत मिडिल क्लास को भी मिलेगा, मगर इससे केवल मिडिल क्लास को टैक्स थोड़ी छूट देके इनका जो पॉलिटिकल मकसद जो है, जो बड़ा मकसद जो है लोगों तक, असली गरीबों तक कुछ सोशल वेलफेयर पहुंचाने का, वो पूरा नहीं होगा।
वरिष्ठ पत्रकार एमके वेणु से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी निखिल रंजन। और अब चलते हैं अमेरिका, जहां 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर विवाद जारी है। ताज़ा घटनाक्रम में ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ अमेरिकी विदेश मंत्रालय के 900 से ज़्यादा कर्मचारियों ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, और ऐसा उस समय हुआ है जब व्हाइट हाउस ने उनके लिए चेतावनी भी जारी की थी। तो सीधे चलते हैं वाशिंगटन अपने संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के बाद और जानकारी के लिए। ब्रजेश, ये बताइए कि क्या जानकारी है आपके पास और इस बारे में?
पंकज, इस दस्तावेज को डिसेंट मेमो या असहमति दस्तावेज कहते हैं, और विदेश विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बीबीसी को इस बात की पुष्टि की है कि इस पर लगभग 900 अधिकारियों ने दस्तखत किए हैं और इसको प्रबंधन के सुपुर्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को जब इस तरह की मुहिम की खबर आई थी तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि जो लोग इस नीति से असहमत हैं वो छोड़कर जा सकते हैं, यानी ट्रंप की जो मुसलमान बहुल देशों के अप्रवासियों और शरणार्थियों पर रोक लगाने की नीति है उसके बारे में। दस्तावेज के अनुसार ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है वो अमरीकी मूल्यों के खिलाफ है, और इससे पूरी दुनिया में अमरीका विरोधी भावनाओं को हवा मिलेगी। और विदेश विभाग के अधिकारियों ने लिखा है कि वो नीति जो 20 करोड़ वैध यात्रियों को इस मकसद से रोकती है कि इससे कुछ गिने चुने वैसे लोगों को रोका जा सकेगा जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो अमेरिका को सुरक्षित बनाने में कारगर नहीं होगी। और यहां ये बताना चाहूंगा कि विदेश विभाग के अधिकारी डिसेंट मेमो के जरिए प्रशासन की नीतियों के खिलाफ असहमति जता सकते हैं। इसकी शुरुआत वियतनाम युद्ध के दौरान हुई थी, और हाल के वर्षों में ओबामा की सीरिया नीति के खिलाफ भी कुछ अधिकारियों ने इसका इस्तेमाल किया था।
ब्रजेश, ये भी जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर जिस पर अमेरिका की नजर थी, दुनिया की भी नजर थी, उसमें क्या डेवलपमेंट है, कुछ अनाउंसमेंट हुआ है क्या?
जी हाँ, अब से कुछ ही मिनटों पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने बेहद, बिल्कुल आप कह सकते हैं, नाटकीय अंदाज में जज नील एम गॉर्सिच को सुप्रीम कोर्ट का अपना उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है देश के सामने। यहाँ पर बताने की जरूरत होगी कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच होती है, लेकिन अभी लगभग एक साल से 8 जज ही रहे हैं उस पर, और क्योंकि एक जज की मृत्यु हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के में यहाँ पर यह है कि एक बार एक जज की नियुक्ति हो जाए तो वो अपनी जब तक जिंदा रहते हैं तब तक वो जज बने रहते हैं, और यहाँ कोशिश ये होती है जब डेमोक्रेट पावर में हो तो वो कोशिश करते हैं कि किसी उदारवादी जज को नियुक्त करें, रिपब्लिकन्स होते हैं तो वो कोई कंजर्वेटिव जज को नियुक्त करना चाहते हैं, और गॉर्सिच जो है इनको एक कंजर्वेटिव जज माना जाता है, तो एक तरह से अभी कोशिश होगी कि 5-4 का समीकरण हो जाए, लेकिन डेमोक्रेट्स ने कहा है कि उनकी नियुक्ति के लिए वो को रोकने के लिए जी जान लगाएंगे वो कांग्रेस में। तो आने वाले दिनों में इस पर काफी आप कह सकते हैं कि हंगामा मचेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय, आपका ये थे वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। और अब चलते हैं पंजाब, जहां फिल्मों में और दूसरी जगहों पर भी कई बार जट यमला की बात सुनाई देती है। आपने कभी सोचा है कि ये जट यमला है क्या? जट यमला वो पंजाबी किरदार है जो तुर्रेदार पगड़ी, लुंगी और जूतियां पहनकर मस्त मलंग भांगड़ा करता है। पर इस जट यमले को मशहूर करने वाले शख्स का नाम है उस्ताद लाल चंद यमला जट। हाल ही में हमारे साथी सलमान रावी चुनाव के सिलसिले में पंजाब में थे, जहां उन्होंने उस्ताद लाल चंद के परिवार वालों से मुलाकात की। सुनिए ये खास रिपोर्ट।
यह है उस्ताद लाल चंद यमला जट की कुछ यादगार प्रस्तुतियों में से एक। उस्ताद लाल चंद यमला जट ने न सिर्फ पंजाबी लोक संस्कृति को पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान दी, बल्कि उन्होंने यमला जट के पहनावे को भी अलग पहचान दी। जिस तुर्रे पगड़ी, जूतियां और धोती पहने हुए यमला जट की कल्पना की जाती है, उसका श्रेय उस्ताद लाल चंद यमला जट को ही जाता है। लाहौर के पास जन्मे उस्ताद भारत के विभाजन के बाद लुधियाना के सरकारी बस पड़ाव के सामने बसी रेफ्यूजियों की कॉलोनी में रहने लगे। वो पाकिस्तान से अपने पीर कटोरे शाह बाबा के मजार की मिट्टी लेकर आए थे। उन्होंने लुधियाना में अपने पीर का मजार बनाया और वहीं पर तुम्बी का रियाज शुरू किया, मगर चिमटे पर उनकी संगत करने वाले आलम लोहार उनसे बिछड़ गए क्योंकि वो पाकिस्तान में ही रह गए थे। मगर पंजाब में कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को मलाल है कि राज्य में जिस किसी की भी सरकार आई, उसने कभी ना तो उस्ताद लाल चंद यमला जट की परंपरा को आगे बढ़ाने की सोची और ना ही उनके परिवार को सहायता देने की। उस्ताद की बहू यानी उनके बेटे जसदेव कुमार यमला जट की पत्नी सरबजीत कहती हैं,
हमारे फादर इन लॉ जब बीमार थे तब गवर्नर साहब भी घर में आए हुए थे, पर हमारे फादर साहब ने कुछ नहीं उनसे मांगा और एक टेलीफोन
मतलब
दिया था।
ये जट यमला जो है वो बीमार जब पड़े
तो गवर्नर साहब आए थे उनका पता लेने, उनकी वाइफ भी आई थी, पर उन्होंने पूछा भी आपको क्या चाहिए, तो लेकिन हमारे जो मेरे हस्बैंड है जो चारों भाई इंग्लैंड में गए हुए थे, तो कहने लगे मैं किसी के घर फ़ोन सुनने नहीं जा सकता, मेरे को एक फ़ोन लगा दीजिए, और कुछ नहीं मांगा उन्होंने, पर जो फ़ोन भी लगा उनकी डेथ के एक महीने बाद लगा।
सरकारी उदासीनता से दुखी सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने मिलकर खुद ही उस्ताद यमला जट की न सिर्फ मूर्ति बनाई बल्कि बस अड्डे के सामने उनकी याद में एक पार्क भी बनवाया, जहां लोग संगीत के कदरदान अपना समय बिताने आते हैं।
आवे बना ले सगना दा गाना, गाने ते फुम्मन जा, मेरी बनरी दे।
वरिष्ठ पत्रकार नदीम ने बीबीसी को बताया कि किस तरह सामाजिक संगठनों की पहल पर लुधियाना के बस स्टैंड के पास उस्ताद की याद में पार्क बनाया गया।
अफसोस ये कि उस्ताद लाल चंद यमला जट जब नहीं रहे उसके बाद इनके नाम लेवा नहीं रहे, सरकार ने इन्हें बुला दिया और एक तरीके से इन्हें बिसारा गया, फिर एक इनका छोटा सा बुत यहाँ बस अड्डे के करीब लगाया जिसे बाद में इस पार्क में शिफ्ट किया और इस पार्क को नाम दिया गया यमला पार्क।
तेरे इत्थे बंदे आदम खाने ने सज्जन नाम वद के ठग सियाने ने।
ये हैं उस्ताद के पोते सुरेश यमला जट, जो तुम्बी और लोक गायकी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार परिवार की मदद ना करे तो ना सही, मगर वो चाहते हैं कि जिस कला ने पंजाब की लोक गायकी को पहचान दिलाई, सरकार कम से कम उसको तो जिंदा रखे।
लोगों को टाइम नहीं लग्या, उन्होंने किसी तरह की कोई उस्ताद लाल चंद यमला जट की साड़ी मदद चलो की करनी है, पर उस्ताद लाल चंद यमला जट की मैं बेनती करता कि उन्होंने मदद की जाए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
पंजाब में विधानसभा के चुनावों का प्रचार अपने पूरे शबाब पर है, मगर इस चुनावी शोर शराबे के बीच पंजाब के लोक संगीत और संस्कृति की ये आवाज यानी उस्ताद लालचंद यमला जट का तुम्बी वादन और गायकी दब कर रह गई है। सलमान रावी, बीबीसी लुधियाना।
सलमान रावी की ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। मानसी अखबारों को खंगाल के आ चुकी हैं स्टूडियो में। जी मानसी।
पंकज जी, शुरुआत करेंगे जनसत्ता में छपे इरफान के कार्टून से। कार्टून है बजट पर, इसमें एक डॉक्टर एक व्यक्ति की हड्डियां तेल मालिश करके ठीक कर रहे हैं और पीछे एक अधिकारी किसी को फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं वो फिर से तैयार है बजट पेश किया जाए
बजट झेलने के लिए।
जी। और अखबार इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी एक खबर जिसके अनुसार लश्कर तैयबा के संस्थापक और जमात उद्दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उनके नज़रबंद किए जाने का कारण है वो हैं भारतीय प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति की दोस्ती। हाफिज सईद ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर लिया है और इसके लिए नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जिम्मेदार है। कश्मीर मुद्दे और बलूचिस्तान पर वो काफ़ी बोलते हैं जिस कारण मोदी सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला था। अखबार में छपी एक और खबर के अनुसार विवादों में घिरी फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर अब भाजपा के मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आ गया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि रानी पद्मिनी की कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक हिंदू थी। उन्होंने कहा कि कोई भी फिल्म निर्माता मोहम्मद पैगम्बर पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अपने बड़े नेता नरेंद्र मोदी के चेहरे को ज़्यादा सामने नहीं लाना चाहती। अखबार के अनुसार मोदी उत्तर प्रदेश में केवल 14 रैलियों को संबोधित करेंगे, 7 पहले चरण के दौरान और 7 दूसरे चरण के दौरान। वहीं बिहार में चुनाव से पहले मोदी ने करीब 30 रैलियों को संबोधित किया था।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका। और अब समय है खेल की खबरों का सुमिरन प्रीत कौर से।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला है बेंगलुरु में। इस सीरीज का जहां पहला मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम किया तो दूसरा मुकाबला भारत ने अपने नाम किया। 1-1 से ये सीरीज बराबर है। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है भारतीय क्रिकेट टीम की, इस पर रोशनी डाल रहे हैं भारत के ओपनिंग बैट्समैन KL राहुल।
Thoughts are clear, we have to go out there and get this win. It's very important that
हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं। ये बॉलर भी समझते हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है तो रन बनाने ही होंगे। हमें खेल को एंजॉय करना होगा, बस अपने बेसिक्स पर ध्यान दें, विकेट्स लेने की कोशिश करें।
भारत इस वक्त मेजबानी कर रहा है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का। इस क्रिकेट सीरीज में हुई टेस्ट मैच की सीरीज, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की सीरीज और T20 सीरीज आज इस पूरी श्रृंखला का आखिरी मैच है। वहीं आज दूसरी तरफ मुकाबला होगा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच डर्बन में। ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच है इन दोनों देश के बीच। पहला मुकाबला हुआ था पोर्ट एलिजाबेथ में जिसे साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया था। अब बात ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, बांग्लादेश और नेपाल के बीच और श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच। भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने ओपनिंग मैच जीते। और अब बात हॉकी की। हॉकी इंडिया लीग में आज रांची में मुकाबला है रांची रेस और JP पंजाब वॉरियर्स के बीच। अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो हॉकी इंडिया लीग में 12 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे हैं दबंग मुंबई। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और कार्यक्रम के अंत में सुनिए प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और सांसद ई अहमद का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बुधवार तड़के निधन हो गया। 78 साल के ई अहमद केरल के मल्लापुरम सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। बजट सत्र के पहले दिन संसद में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बधाई दी और सरकार के काम की सराहना की। अमरीकी सीनेट की फाइनेंस कमेटी में मौजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नामांकित 2 प्रतिनिधियों के लिए वोट का बहिष्कार कर दिया है जिस कारण इस प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया गया है। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज, पंकज प्रियदर्शी और मानसी दास को अनुमति दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे दिन भर में। तब तक आपके साथ है bbchindi.com, जिस पर आप बजट से संबंधित हर खबर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।